स्कंद पांच अध्याय सात और श्लोक संख्या आठ, मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज का जो श्लोक है वो आप नहीं दोहरा पाएंगे क्योंकि बोर्ड पे है नहीं, और वैसे भी ये प्रोज फॉर्म में है, पोएट्री में नहीं है, तो इसको गा नहीं पाएंगे। तो इसके शब्दार्थ पहले कर लेते हैं, फिर इस श्लोक को मैं दोहराऊंगा। बोलिए। एवं इस प्रकार सदैव कार्यरत रहकर वर्ष अयुत सहस्त्र 10,000 वर्षों के 1,000 गुने वर्ष अर्थात 1,00,000 वर्ष पर्यंत बीतने तक अवसित कर्म निर्माण अप्सरा राज्य ऐश्वर्य का अंत समझकर महाराज भरत अधिभुज्य मानम उस काल तक इस प्रकार भोगी जाकर स्वतनेभ्य अपने पुत्रों को रिक्तम संपत्ति पितृ पैताम अहम अपने पिता तथा पूर्वजों से प्राप्त यथा दायम मनु के दायभाग नियम के अनुसार यानी यथा योग्य विभज्य बांटकर स्वयं सकल संपद सभी प्रकार के ऐश्वर्यों का निकेतात घर से स्वनिकेतात अपने पैतृक घर से पुलह आश्रमम प्रव्राज हरिद्वार में पुलह आश्रम चला गया जहां शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। अब इस श्लोक को मैं पढ़ता हूँ। एवं वर्षायुत सहस्त्र पर्यंत अवसित कर्म निर्णाम सरो अधिविज्यमानम स्वतनेभ्यो रिक्तम पितृपैताम अहम यथा दायम विभज्य स्वयं सकल संपन्न निकेता स्वनिकेता पुल आश्रमम प्रव्राज एवं वर्षायुत सहस्त्र पर्यंत तावसित कर्म निर्वाण अवसरो अधिभुज्यमानम् स्वतन येभ्यो रिक्थम पितृपैतामहम् यथा दायम् विभज्य स्वयं सकल संपन्निकेता स्वनिकेतात् पुल आश्रमम् प्रव्राज। तो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रपाद के द्वारा, शिला प्रपाद की। तो प्रारब्ध ने महाराज भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष नियत कर दी थी और जब यह अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। उन्होंने समस्त ऐश्वर्यों के आगार अपने पैतृक ग्रह को छोड़ दिया और वे पुल आश्रम के लिए, पुलहा आश्रम के लिए चल पड़े जो हरिद्वार में स्थित है। वहां शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। मेरे पीछे दोहराइए, प्रारब्ध ने महाराज भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष नियत कर दी थी। जब यह अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। उन्होंने समस्त ऐश्वर्य के आगार अपने पैतृक ग्रह को छोड़ दिया और वे पुलह आश्रम के लिए चल पड़े जो हरिद्वार में स्थित है। वहां शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। तात्पर्य, दायभाग नियम के अनुसार जब किसी को कोई संपत्ति मिल जाती है तो उसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना होता है। महाराज भरत ने इसे सुचारू रूप से संपन्न किया। पहले तो पैतृक संपत्ति का उन्होंने स्वयं 1 करोड़ वर्ष तक उपभोग किया और विरक्त होते समय इस संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया और वे स्वयं पुलह आश्रम चले गए। तो यहाँ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। छोटा ही तात्पर्य है। ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांशन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यामरोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वंदेयं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताक्ष। नमोम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे गोसाई करी चरण वंदन जहाँ हिते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण षट गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्तशक्तिकम। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रमामे हरि प्रिय। ओम नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीन तारणम। वांछा कल्पतरु भिक्षु कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का श्री वृंदावन धाम में प्रातःकालीन भागवत कक्षा में बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपकी कृपा का याचक हूँ कि मैं श्रीमद् भागवतम महापुराण के चले आ रहे स्कंद के इस श्लोक के ऊपर कुछ बोलने में मेरे श्रील प्रभुपाद और गुरु परंपरा गुरुदेव शक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा। तो आज जैसा कि राजा भरत के कार्यकलापों का वर्णन चल रहा है और आज का जो श्लोक है उसी के अंतर्गत है जिसका अर्थ एक दफा फिर से हम दोहरा देते हैं। प्रारब्ध ने महाराज भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष नियत कर दी थी। जब यह अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने गृह जीवन का त्याग कर दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को पुत्रों में बांट दिया। उन्होंने समस्त ऐश्वर्य के आगार अपने पैतृक गृह को छोड़ दिया और वे पुलह आश्रम के लिए चल पड़े जो हरिद्वार में स्थित हैं। वहां शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। तो सर्वप्रथम जैसे कि आप पहले भी सुन चुके हैं कि भरत महाराज के नाम पर इस पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष के नाम से जाना गया और भारतवर्ष से पूर्व इसका नाम क्या था? अजनाब, अजनाब वर्ष। तो अजनाब वर्ष का अर्थ जो है, अज का मतलब है ऋषभदेव और नाभ का मतलब है नाभि महाराज। तो ऋषभदेव और नाभि महाराज दोनों के नाम से ये पहले पूरा भारतवर्ष कहलाया जाता था अजनाब वर्ष। लेकिन महाराज भरत के जब आके राज्य संभाला तो फिर उनके इतने अच्छे कार्यकलाप थे और उन्होंने इतने संपन्नता से इतनी संपूर्णता से राज्य को किया तो नाम बदल करके जनता ने नाम बदल दिया। क्या कर दिया? भारतवर्ष कर दिया। तो ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय थे लेकिन इसी जीवन में क्षत्रिय से वो ब्राह्मण हो गए और 9 पुत्र जो है परम विरक्त योगी बन गए और नौ पुत्रों को नौ वर्षों का राजा बना दिया। तो इस तरीके से 99 हो गए और सबसे ऊपर कौन थे? भरत महाराज, राजा भरत। तो इस तरीके से ये जो श्लोक है इसमें लिखा है एवं वर्षायुत सहस्त्र पर्यंत, मतलब एक इसका अर्थ बताया गया है कि 10,000 वर्षों के 1,000 गुना एवं वर्षायुत सहस्त्रा, यानी 10,000 को 1,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़। 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने शासन किया और शासन करने के बाद उन्होंने फिर उसको त्याग दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो 1 करोड़ वर्ष है ये कोई बहुत अधिक अवधि नहीं है। महाराज भरत के लिए बहुत अधिक अवधि नहीं है। क्यों क्यों बहुत अधिक अवधि नहीं है? क्योंकि महाराज भरत सीधे सीधे साक्षात भगवान के पुत्र हैं, साक्षात भगवान के पुत्र हैं। तो जब भगवान के पुत्र हैं तो उनके लिए, अब भगवान जब महाविष्णु उनके रोम कूपों से क्या निकलते हैं? ब्रह्मांड निकलते हैं। और ब्रह्मांड की आयु कितनी होती है? महाविष्णु के एक श्वास जितनी होती है पूरे ब्रह्मांड की आयु। तो ब्रह्मा की जितनी आयु है वो ब्रह्मांड की आयु होती है और वो महाविष्णु की एक श्वास है। तो फिर भगवान के साक्षात पुत्र होने के कारण 1 करोड़ वर्ष उनके लिए कोई अधिक अवधि नहीं है। तो कहां चले गए? हमारा आज का श्लोक कहता है कि वो उन्होंने गृह त्याग कर दिया और वो चले गए, कौन सा आश्रम है? हरिद्वार में चले गए, पुल्हा आश्रम, पुल्हा आश्रम में चले गए। और लिखा है कि वहां पुल्हा आश्रम के लिए चल पड़े जो हरिद्वार में स्थित है, जहां शालिग्राम शिलाएं भी प्राप्त होती हैं। तो जो पुल्हा ऋषि हुए हैं, सप्त ऋषि हुए, सप्त ऋषि में एक ऋषि कौन थे? पुल्हा ऋषि। और सप्त ऋषियों के 7 आश्रम भी हरिद्वार में थे और गंगा जी की धाराएं, 7 धाराएं निकलती थी, 7 धाराओं में गंगा जी विभाजित होती थी और एक एक आश्रम को वो पवित्र करती थी। तो आज भी अगर आप हरिद्वार जाएंगे तो आपको सप्त ऋषि मार्ग वहां मिलेगा और वहां स्थान भी हैं जैसे सप्त ऋषियों के विग्रह बने हुए हैं, सप्त ऋषि मार्ग है। तो ऐसे करके तो पुल्हा ऋषि के आश्रम में महाराज भरत चले गए। लेकिन कुछ समय के बाद जो पुल्हा ऋषि थे वो हरिद्वार से गंडकी नदी के तट पे जो नेपाल के पास में है वहां चले गए और उसके पीछे पीछे फिर भरत महाराज भी वहां चले गए। तो घर छोड़ दिया, गृह को छोड़ दिया और क्या किया? अपनी जो संपत्ति थी, जितनी भी उनके पास संपत्ति थी वो पितरों के द्वारा आई हुई, पिता से और पितामह से आई हुई संपत्ति को क्या किया? पुत्रों में विभाजित कर दिया और गृह को त्याग दिया। तो ये कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट की कथा एक दूसरे चक्रवर्ती सम्राट को सुनाई जा रही है। परीक्षित महाराज भी गृह त्याग के आए थे लेकिन उसका कारण कुछ और था। जब श्रृंगी ऋषि के शाप के द्वारा उनको पता लगा तो उन्होंने उसका पश्चाताप करना अधिक उत्तम समझा, हालांकि वो उस शाप से मुक्त हो सकते थे, लेकिन उन्होंने युवा अवस्था में अपना पूरा राज्य जन्मेजय को सौंप कर, जो उनके पुत्र थे, वो गंगा नदी के तट पे आ गए और वहाँ आकर के उनको फिर सुखदेव गोस्वामी का और अनेक ऋषियों का सान्निध्य प्राप्त हुआ और ये कथा। तो सुखदेव गोस्वामी जो ये कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो ये उनको आभास कराना चाहते हैं कि आप ही केवल पूरे राज्य को नहीं छोड़ा, आपसे पूर्व भी कई राजा हुए हैं जिन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी पर जिनका एकटक राज्य था उसको उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। तो क्या भरत महाराज को कोई कष्ट था, कोई राज्य में उनको कुछ राज्य करने में कुछ उनको परेशानी आ रही थी? नहीं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम में ये जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि जब मनुष्य को इस बात का आभास हो जाता है या इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, तब राज्य फिर छोटा हो या बड़ा हो, है ना, जब ये ज्ञान हो जाता है कि मेरे को इस संसार से विरक्त होकर के और भगवान के धाम जाने का, भगवान के पास पुनः वापस लौटने का प्रयास करना है या वहां मेरे को पहुंचना है, तो जब ये हमारे मन में, हमारे बुद्धि में ये बात बैठ जाती है, तो फिर अंतर नहीं पड़ता कि हमारा राज्य कितना बड़ा है या कम बड़ा है, छोटा है। तो इस प्रकार से इस श्लोक से हम इस बात की हमारे को शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति को समय आने पे गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। क्यों? कि भरत महाराज को जो उनके पिता भगवान साक्षात ऋषभ देव ने, उन्होंने ही बता दिया था कि ये जो जीवन है ये क्या है, तप के लिए है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, इस संसार में मत फंसना, इस संसार ये बाहर से जो आपको इतना आकर्षक दिखता है इस संसार में नहीं फंसना, इस संसार से आपको बाहर निकलना है। तो ये साक्षात ऋषभदेव ने, भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जब दिया और सब पुत्रों को कहा कि आप क्या करो, आप इनका अनुसरण करो, अपने बड़े भाई का भरत महाराज का अनुसरण करो, तो भरत महाराज जानते थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमको भी जानना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वानप्रस्थ में जाने का मतलब, पहले तो वन में जाया करते थे, अब तो वन दिखते नहीं हैं। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भाई अगर आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप वानप्रस्थ का जीवन बिता सकते हैं, ये आवश्यक नहीं कि आपको गृह त्याग करके ही जाना है, लेकिन कुछ तपस्या करनी होगी। तपस्या सब किसी के लिए है, केवल ये नहीं कि जो ब्रह्मचारी हैं या जो वानप्रस्थ लेकर के घर का गृह का त्याग कर दिया है या जो सन्यासी हैं, तपस्या केवल उनके लिए है, भ्रम गृहस्थों के लिए तो ये सब नियम लागू नहीं होते। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा, चाहे आप ज्ञान योग देख लो, चाहे आप सांख्य योग देख लो, चाहे आप ध्यान योग देख लो, तपस्या सब जगह भक्ति योग है, तपस्या। बगैर तपस्या के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। या तो ताप को सहन करना पड़ेगा, पाप का फल होता है ताप। जब हम पाप पूर्ण कार्य करते हैं तो हमें प्रकृति के द्वारा ताप दिया जाता है, उस ताप को सहन करो। लेकिन वो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है कि हमारे को ताप दिया जाए और हम उसको सहन करें। अगर ताप सहन नहीं करना चाहते तो क्या करना है, फिर स्वयं से जो करना है वो तपस्या। जो प्रकृति आपको जबरदस्ती भोग कराती है, आपको पापों का फल आपको चुकाना पड़ता है, उसको ताप कहते हैं। और जो हम स्वयं से स्वीकार करते हैं भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, उसको तप कहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति सहर्षि तप को स्वीकार करता है, ताप को स्वीकार नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि मेरे को दंड मिले। स्वेच्छा से मैं अपनी इच्छा से अपने शुद्धिकरण के लिए मैं तप करूंगा, ये बुद्धिमत्ता है। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके हमारे को भी कुछ न कुछ तपस्या करनी चाहिए। अब यहां बताया गया है सकल संपन्न निकेतात, इस श्लोक में आया सकल संपन्न निकेतात, यानी भरत महाराज के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फुल ऑफ ऑप्यूलेंस, सारा ऐश्वर्य उनके पास था। इतना सब ऐश्वर्य था, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, कोई कम बात तो नहीं थी। उस सब को त्याग दिया एक झटके में त्याग दिया और संपत्ति का बंटवारा किया और पुला आश्रम की ओर चले गए। तो भक्ति को वैराग्य विद्या भी कहते हैं। वैराग्य की विद्या हमको सीखनी है। हर वक्त घर में जुटे तो नहीं रहना, और घर में रहना है तो कैसे रहना है, वैराग्य का जीवन बिताना है, ताकि जब कभी घर छोड़ने का समय आए तो फिर हमारे को कष्ट ना हो। उस वक्त कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर घर में आसक्त होंगे, जिस भी चीज में आसक्त होंगे, वो जब छूटेगी तो फिर कष्ट होगा। तो ना घर में आसक्त रहना है, ना इस शरीर में आसक्त रहना है। तपस्या करनी चाहिए। कभी कभी घर में भी ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि गर्मियों में एसी को बंद करके कुछ समय रह के देखो। कभी जाना पड़ जाए घर छोड़ के, या ऐसी स्थिति आ जाए, ये नहीं कि बगैर एसी के रह ही नहीं सकते। और आजकल वृंदावन में सर्दियों का मौसम है, कभी रजाई हटा करके भी थोड़ा दो घंटा घंटा सो के देखो। कि हम सह पा रहे हैं कि नहीं सह पा रहे। अभी घर छोड़ने की बात तो नहीं कह रहे आपसे, लेकिन घर में रह करके ही घंटे आधे घंटे का प्रयास करने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है। कभी भूखे रह करके भी देखना चाहिए, क्योंकि वन में जाने पे तो हर समय हमारे पसंद की सामग्री नहीं मिलेगी। और एकादशी पे भी हमारे को थोड़ा उपवास करना चाहिए। लेकिन आजकल कहते हैं जी हम एकादशी फीस्ट करेंगे, एकादशी फीस्ट। तो एकादशी फीस्ट कोई अच्छी बात नहीं है। एकादशी फीस्ट से बचना चाहिए। उपवास कम से कम, मतलब एकादशी पे कुछ ग्रहण करना चाहिए, और अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो फिर गृहस्थ आश्रम में रह करके भी सारे कार्य, यानी गृहस्थ आश्रम को भी आप वानप्रस्थ बना सकते हो। तो यही महाराजा भरत ये करने जा रहे थे। वो जब वहां गए तो उनके भक्ति तो उनके अंदर जन्म से कूट कूट के भरी थी, भक्ति की कमी नहीं थी महाराज भरत में। जब वो राजा थे तब वो अनेक प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया करते थे, अनेक प्रकार से भगवान को संतुष्ट किया करते थे। बहुत 56 भोग क्या 56 करोड़ भोगों से भगवान को जो है प्रसन्न किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने राज्य का त्याग किया तब भी उन्होंने भगवान की सेवा करने नहीं छोड़ी। वहां भी वो जाकर के कंद मूल पुष्प गंडकी नदी का जल लेकर के और भगवान की पूजा अर्चन किया करते थे। वो भक्ति के उच्चतम शिखर पर पहुंचे हुए थे। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनति आशु क्या है आगे, वैराग्यम ज्ञानम च यद एहतुकम। तो वासुदेव भगवान की भक्ति करते करते ज्ञान और वैराग्य तो उनके हृदय में भरा पड़ा था और उनकी वाणी गदगद होती थी, बोल नहीं पाते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहां तक वर्णन है कि उनकी आंखों में अश्रुधारा बहती रहती थी, इसलिए उनको कुछ दिखाई भी नहीं देता था। जो पूजा अर्चन की सामग्री है उसको वो देख भी नहीं पाते थे और इतने वो भाव विभोर रहते थे। उनको ये भी नहीं पता होता था कि पूजा में प्रारंभ में क्या करना है। प्रारंभ में अगरबत्ती दीपक से भगवान को आरती करनी है और अंत में क्या करना है वो अंत का कार्य पहले कर लेते थे और जो पहले का कार्य है वो अंत में करते थे। पूर्ण रूप से महाराज भरत भगवान की भक्ति करते करते अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके थे। तो ये सब जो घटना बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इसके पीछे वो क्या बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति पर पहुंच कर भाई क्या हो सकता है, हम अपने लक्ष्य से नीचे गिर सकते। ऐसी स्थिति पर पहुंचने पर यह नहीं कि भरत महाराज कोई अज्ञानी थे या उनको कुछ पता नहीं था, यह भगवान की इच्छा से होता है। भगवान के साक्षात पुत्र तो भगवान कभी कभी हमको संदेश देने के लिए अपने पुत्रों से यह कार्य करा लेते हैं कि चलो एक जीवन आप अपना हिरण की योनि में बिता दो हमको सिखाने के लिए। जब भगवान भगवत गीता देना चाहते थे तो अर्जुन को अज्ञान में डाला। अर्जुन कोई अज्ञानी थे? भगवान के मित्र थे, अज्ञानी हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। लेकिन भगवान ने हमको भगवत गीता देने के लिए अर्जुन को कुछ समय के लिए मोहित कर दिया, अज्ञान में डाल दिया। इसी प्रकार भगवान हमको ये संदेश पहुंचाने के लिए कि उच्चतम शिखर पर पहुंच करके भी किसी का पतन हो सकता है, उन्होंने ये कार्य भरत महाराज के माध्यम से संपन्न किया। तीन संतों की गृहस्थ थे तीनों, और तीनों कि पत्नियां से उनकी अपनी अलग अलग अनुभूति थी। देखो भक्तों की कैसी अनुभूति होती है। एक संत थे, उनका नाम था एकनाथ। भगवान से बड़ी प्रार्थना करते थे। उनकी पत्नी संत एकनाथ की भक्ति में उनका बड़ा सहयोग करती थी। तो भगवान के पास जाते, हे भगवान आपने बड़ी कृपा करी मुझ पे, मेरे को ऐसी पत्नी दी जो मेरे को भक्ति में इतनी सहायक है। अगर आपने मुझको ऐसी पत्नी नहीं दी होती तो मैं तो आप तक पहुंच ही नहीं पाता। जितनी वो मेरी सहायता करती है मैं उसके बगैर नहीं पहुंच पाता। तो आप की बहुत कृपा है मेरे पे। संत एकनाथ की ये अनुभूति। दूसरे संत तुकाराम की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, घर में बैठने ही नहीं देती थी उसको, भगाए रखती थी। तो वो भगवान के पास आके कहते, भगवान आपने बड़ी कृपा कर दी है, आपने मेरे को ऐसी झगड़ालू पत्नी नहीं दी होती मैं तो आप तक पहुंच ही नहीं पाता, घर में ही रमा रहता, अपनी पत्नी के ही फेरे लगाता रहता। अच्छा किया आपने मेरे को झगड़ालू पत्नी दे दी, तब तक मैं आप तक पहुंच तो पा रहा हूं। उनकी अनुभूति। संत नरसिंह भगत, तीसरे भगत, उनकी पत्नी अल्प आयु में ही शरीर छोड़ गई। भगवान बड़ी कृपा करी, आपने मेरे को जंजाल से बाहर ही निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। शिला प्रभुपाद भी अपनी पत्नी से जब कहे, जब उनकी पत्नी ने उनके सारे एक ग्रंथों को है ना बाहर बेच दिया और बदले में क्या ले आई, चाय ले आई। यू वॉन्ट टी और यू वॉन्ट मी, आप क्या चाहते हैं, आप फैसला करो अभी। ऑफ कोर्स टी, मुझको चाय चाहिए, मैं चाय नहीं छोड़ सकती। शिला प्रभुपाद ने कहा ओके बाय बाय। ये भगवान के द्वारा बनाई गई सारा है ना एक प्रयोजन होता है कि कैसे शिला प्रभुपाद को उनके पत्नी से उनके घर से अलग करना है ताकि वो पूरे शरीर पूरे विश्व को हरि नाम दे सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमें आसक्त नहीं होना है, विरक्ति की तरफ चलना है। शास्त्र कहता है कि माताओं को तो वन में नहीं जाना, माताओं को या तो पिता के अधीन रहना है या पति के अधीन रहना है या पुत्र के अधीन रहना है, लेकिन भक्ति करनी है जहां भी है। भक्ति से किसी को छूट नहीं है, भक्ति सबको करनी है। लेकिन अगर उन माताओं के जो पति हैं वो अगर भक्त हैं तो वो अगर उनकी सेवा भी करती हैं तो उनका शीघ्र कल्याण भी हो जाता है। भक्त की सेवा करने से कल्याण हो जाता है, उनको फिर बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। और पति अगर भक्त है और आप भक्त की पति और भक्त दोनों की सेवा एक साथ हो रही है तो कल्याण वैसे हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किस प्रकार से, उन्होंने तो पूरे राज्य पूरे भारत वर्ष को एक झटके में छोड़ दिया। एक साधु थे, विरक्त साधु थे, उनके पास एक छोटी सी कुटिया थी और एक कोपिन था और एक धोती थी। एक धोती को पहने रहते थे, उसी धोती को ही धोते और सुखाते फिर पहनते, बड़े विरक्त साधु थे और अध्ययन करते रहते थे। तो एक दफा किसी को उनके ऊपर कुछ दया आई, उन्होंने कहा कि एक ही धोती को धोते हो सुखाते हो है? हम आपको एक सेट लेकर के देते हैं, नया सेट धोती कुर्ते का, आप लीजिए और आराम से उसको जो है रखिए, एक पहनी एक धोई है ना, एक ही को क्या करते हो। तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, अपनी कुटिया में ले आया और उस सेट को देखा तो उस सेट से धोती कुर्ते से आसक्ति हो गई कि ये धोती कुर्ता तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन उनकी कुटिया में क्या था, एक चूहा था। अब उनको ये डर खाने लगा कि ये चूहा कहीं जो है ये खा न ले। चूहा कुछ ना कुछ खा जाता था उनके किताबों को ग्रंथों को खा लेता था। तो वो डर उनके यही बैठ गया कि किस तरीके से इससे छुटकारा पाया जाए। तो किसी ने कहा कि भाई आप क्या करो, एक बिल्ली पाल लो, एक बिल्ली पाल लो। उसने बिल्ली की इच्छा करी तो बिल्ली मिल गई। अब बिल्ली आ गई तो चूहा भाग गया, लेकिन बिल्ली आ गई तो फिर क्या करने लगी, म्याऊं 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 म्याऊं, हर वक्त म्याऊं। उसको क्या चाहिए, उसको दूध चाहिए। अब दूध कहां से लाऊं, अब यही आया कि भाई किसी तरीके से एक गाय मिल जाए। झंझट बढ़ता जा रहा है, झंझट गाय को ले आए। अब गाय से दूध तो मिलने लगा, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं बंद हो गई, लेकिन अब गाय की सेवा कौन करे, गाय को कौन तो दूध दोए, कौन उसकी गोबर उठाए, कौन उसको सारी सेवा करे, चारा खिलाए। ये तो बड़ा कठिन काम है, तो मेरा सारा दिनचर्या मेरी हिल गई। आप क्या करोगे, आप कोई सेविका सेवक सेविका रख लो। अच्छा, तो इस तरीके से उन्होंने फिर एक सेविका ले आए जो उसकी पत्नी बन गई। अब पत्नी बन गई, अब पत्नी बनने के बाद वो सेवा करने लगी। फिर कुछ समय के बाद वो कहती है, मैं इसी काम के लिए रह गई हूँ तुम्हारे गाय की सेवा करने के लिए और करने के लिए, मेरा तो दिन कटता नहीं है, मुझे संतान चाहिए। अब कुछ समय के बाद फिर उनको संतान हुई, और संतान होने के बाद फिर वो पापा 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 पापा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इस तरीके से वो विरक्त साधु क्या बन गए, गृहस्थ। गृहस्थ भी जंजाल में फंस गए, क्या एक केवल धोती कुर्ते के, एक धोती कुर्ते के चक्कर में कहां से कहां उनको जो है प्रारब्ध ले गया। तो हमारे हमको मन को टटोलते रहना चाहिए कि हमारा मन किस दिशा में जा रहा है। हम वैराग की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हमारी भक्ति स्टेग्नेंट है, मतलब उसी स्तर पे है, या हम कुछ भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। एक साधारण सा दुकानदार होता है, उसका जब साल की बैलेंस शीट बनाता है, उसका जो मुनाफा होता है, अगले साल उसका प्रयास होता है कि मेरा मुनाफा पिछले साल से कुछ बढ़ के होना चाहिए। जो भी कंपनीज होती हैं, सबका प्रयास ये रहता है जिस साल में हमारा जितना मुनाफा है, अगले साल में हमारा मुनाफा उससे अधिक होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। अगर आपका मुनाफा उसी स्तर पे है, इसका मतलब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो जब एक साधारण से लोग ऐसा प्रयास करते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं प्रयास करना चाहिए कि हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। अगर हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब हम आगे पीछे पीछे की तरफ ही जाएंगे। तो चाहे हम गृहस्थ आश्रम में रहें, गृहस्थ आश्रम को ही वानप्रस्थ बना लें, लेकिन हमारा भाव कैसा होना चाहिए, चला भक्ति विनोद ठाकुर जैसा होना चाहिए। चला भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे, ये दिन ग्रहे भजन देखी ग्रह ते गोलो कभाय, चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया। जिस दिन घर में देखता हूं कि हरिनाम कीर्तन हो रहा है, तो मेरे सुख की, और ये जो घर है क्या ऐसा लगता है, गोलोक ही मेरे को दिखाई देता है। और भगवान के चरण अमृत को और गंगा जी का जब दर्शन करता हूं, तो मेरे सुख की सीमा ही नहीं रहती। और मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुइनिया विष खाई नो। तो इस प्रकार से हमारे को अपने को हर वक्त अपने मन का निरीक्षण करते रहना चाहिए। भक्त के लक्षण बताए गए हैं भगवत गीता में 12वें अध्याय में। भगवान कहते हैं, समा शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोषण सुख दुखेशु समा संग विवर्जिता तुल्या निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केंचिता अनिकेता स्थिरमति भक्ति मान में प्रियो नरा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घरवार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे बहुत प्रिय है। तो ये भक्त के लक्षण जो भगवान बताते हैं, कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, इसको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से लक्षणों की कमी है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे जो छठ गोस्वामी हुए, रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे। अल्पायु में ही वो जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथपुरी आकर के उन्होंने 16 वर्ष तक वहां संघ किया महाप्रभु का। अपनी युवा पत्नी का भी उन्होंने त्याग किया, बहुत कम आयु की युवा पत्नी थी उनकी, उसका त्याग किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, उनका परम लक्ष्य यही था। और जब भगवान इस धरा से चले गए तो वो विचलित हो गए, वो वृंदावन आके गोवर्धन से कूद कर अपना शरीर त्याग करना चाहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने उनको सांत्वना दी और उनको कहा कि जो आपने महाप्रभु के साथ 16 वर्षों में जो आपको अनुभूति हुई है, आप यहां सब ब्रजवासियों को बताओ। और राधा कुंड के तट पे खड़े होकर 3 घंटे वो प्रतिदिन प्रवचन देते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये शालिग्राम शिलाएं जहां मिलती हैं, ये गंडकी नदी है, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां गए थे और उनको वो शिलाएं प्राप्त हुई थी। और उन शिलाओं में से एक शिला जिसकी वो सेवा करते थे, जिसमें से आगे चल के राधा रमन भगवान प्रकट हुए, राधा रमन भगवान को प्रकट कर दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। भगवान की साक्षात कृपा मिली थी गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी, उनके वेंकट भट्ट उनके पिता थे और महाप्रभु 4 महीने तक उनके यहां वास किया था और श्री रंगम मंदिर में रोज प्रतिदिन जाया करते थे। तो आज भी आप जाएंगे, राधा रमन जी के दर्शन करेंगे तो उनके पिछले हिस्से में वो शिला लगी हुई है, शिला जिससे वो प्रकट हुए। तो इस तरीके से जो है हम देखते हैं कि हमारे को इस बात को पूर्ण रूप से अपने को समझा लेना चाहिए, अपने मन को समझा लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर परम लक्ष्य हमारा भगवान को प्राप्त करना है तो फिर हमारे को एक समय आने पे सब कुछ छोड़ना होगा। क्या स्वर्ग लोक से भगवत धाम जाया जा सकता है, बताइए? स्वर्ग लोक से भगवत धाम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या नरक लोक से जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ना स्वर्ग लोक से जा सकते हो ना नरक लोक से जा सकते हो। अगर आपको भगवान के पास जाना है तो आपको इस भारतवर्ष में, इस पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा। तो ये राज ऋषि जितने भी थे ये इस बात को समझते थे, जिन्होंने ग्रह का त्याग किया, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे, लेकिन वो अपने लक्ष्य को जानते थे, वो उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करना चाहते थे। ये जो राज्य चाहे कितना भी बड़ा भारतवर्ष हो, वो क्या शाश्वत है? शाश्वत नहीं है। लेकिन शाश्वत राज्य को प्राप्त करना जिसका लक्ष्य होता है, वो फिर इनसे मोहग्रस्त नहीं होता। तो आज के श्लोक का तात्पर्य यही है कि हमारे को हर स्थिति में ये प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे राज ऋषि राज्य करते करते उन्होंने एक चुटकी में ग्रह का त्याग किया, राज्य का त्याग किया, तो हमारे को किसी भी स्थिति में, किसी भी, चाहे हमारी सत्ता हो, हमारी कुर्सी हो, हमारा है ना, कोई भी स्थिति हो, उससे आसक्त नहीं होना। संत महात्मा एक वृक्ष के नीचे भी नहीं सोया करते थे, एक रात एक वृक्ष के नीचे और दूसरी रात दूसरे वृक्ष के नीचे, कहीं कहीं वृक्ष से आसक्ति ना हो जाए कि इसी स्थान पर मेरे को बैठना है, ये तो मेरा स्थान पक्का है, इस स्थान पर आप कैसे बैठ गए, मैं तो रोज आके यहां बैठती हूं। तो छोटी छोटी आसक्तियां बड़ी हो जाती हैं, धोती की आसक्ति से पूरा गृहस्थ परिवार बस गया, तो पता नहीं लगता शुरुआत में, लेकिन हमारे को अपने मन को टटोलते रहना चाहिए कि मैं भगवान की तरफ बढ़ रहा हूं या कहीं और फंस रहा हूं। तो इस प्रकार से ये आज का श्लोक हम यहीं विराम देते हैं, और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो कर सकता है। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण।